दानियल की पुस्तक संख्या 84 लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की चार पीढ़ियों का अनावरण बाइबलीय समांतरता और भविष्यवाणी संबंधी परीक्षण के माध्यम से एक यात्रा।
सत्य दो या तीन गवाहों की गवाही पर स्थापित होता है और ये हिजकेल के 8वें अध्याय की चार गुणित बातों का लाओदिकियाई एडवेंटवाद की चार पीढ़ियों के रूप में किया गया अनुप्रयोग कई साक्ष्यों से पुष्ट होता है। पहली के लेखों में यह दिखाया गया था कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 की 7 कलीसियाएं न केवल प्रेरितों के समय से लेकर संसार के अंत तक आधुनिक इज़राइल के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि ये भी कि वही 7 कलीसियाएं मूसा के समय से लेकर मसीह के समय तक प्राचीन इज़राइल के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करती है। इफिसुस की कलीसिया ने प्रारंभिक मसीही कलीसिया का और साथ ही मूसा से लेकर न्यायियों के समय तक के प्राचीन इज़राइल का भी प्रतिनिधित्व किया। स्मिर्ना की कलीसिया ने शिष्यों के समय से लेकर रोमी सम्राट तक के उत्पीड़न के काल का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही न्यायियों के उस समय का भी, जब हर व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में जो ठीक लगा वही करता था। परगामोस की कलीसिया ने कॉन्स्टेंटाइन से लेकर सन 538 में पापत्व तक के समझौते के काल का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही उस काल का भी, जब प्राचीन इज़राइल ने परमेश्वर को अस्वीकार कर एक राजा चुना और अपने चारों ओर के मूर्ति पूजक राज्यों के साथ लगातार समझौता करता रहा। चौथी कलीसिया थायातीरा, जिसका प्रतिनिधित्व इजाबेल करती है, सन 538 से अठानताटनतता के पापाई शासन का काल है और साथ ही बाबुल में प्राचीन इज़राइल की 70 वर्ष की बंधुआई का भी। वे चार कलीसियाएं एडवेंटिज्म की चार पीढ़ियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और ये साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं कि यहेज़केल की चार घणित पंजाबानों उन चार पीढ़ियों पर कैसे लागू किया जाता है। 1863 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व प्राचीन इज़राइल की पहली पीढ़ी द्वारा किया गया है, जैसा कि हारून के सोने के बछड़े के विद्रोह से स्पष्ट होता है। पहली पीढ़ी में इफिसुस की कलीसिया को दिया गया परामर्श शामिल है, जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर के लोगों ने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया था और उन्हें मन फिराकर अपने पहले प्रेम पर लौटना आवश्यक था। 1863 में पहले प्रेम का जो प्रतिनिधित्व विलियम मिलर के रत्नों मौलिक सत्य विशेषकर सादगुना द्वारा किया गया था, उसे एक ओर रख दिया गया और परमेश्वर के लोगों को लौट आने का परामर्श दिया गया।
परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के काम कर, नहीं तो मैं शीघ्र ही तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा यदि तू मन न फिराए। प्रकाशित वाक्य 2:4-5।
मिलराइटो ने धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद से संघर्ष किया था, जिसे यिर्मयाह ने ठट्ठा करने वालों की मंडली कहा था, और वे दर्शन के आने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि जब वो आएगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। ठट्ठा करने वालों की मंडली का प्रतिनिधित्व उस बूढ़े नबी ने किया, जिसने यहूदा के उस नबी से झूठ बोला था जिसने यारोबाम की कपटपूर्ण उपासना पर फटकार सुनाई थी।
मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धैर्य को जानता हूँ, और ये भी कि तू उन्हें जो बुरे हैं सह नहीं सकता, और तूने उनकी परीक्षा की है जो कहते हैं कि वे प्रेरित हैं और हैं नहीं, और तूने उन्हें झूठा पाया है, और तूने सहा है और धैर्य भी रखा है और मेरे नाम के लिए परिश्रम किया है और तूने हिम्मत नहीं हारी। प्रकाशित वाक्य 3:2-3।
स्मिर्ना की दूसरी कलीसिया प्रारंभिक मसीही कलीसिया में हुए उत्पीड़न के उस काल का प्रतिनिधित्व करती थी जिसमें सच्चे शहीद थे और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने कम पवित्र उद्देश्यों के कारण अपने ऊपर स्वयं उत्पीड़न ले लिया था। ये न्यायियों के समय का भी प्रतिनिधित्व करती थी, जब प्राचीन इसराइल में हर व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में जो ठीक लगता था वही करता था। 1888 में शुरू हुई विद्रोह की पीढ़ी ने भविष्यवाणी की आत्मा उस समय के चुने हुए संदेशवाहकों और पवित्र आत्मा के विरुद्ध उत्पीड़न के एक काल को चिन्हित किया। इसने एक ऐसा काल आरंभ किया जब लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के पुराने नेताओं ने अपनी ही दृष्टि में जो ठीक लगा वही करने का चुनाव किया, जैसा कि खेलॉग, प्रेस्कॉट और डैनियल्स जैसे व्यक्तियों के उदाहरण से स्पष्ट है। उस समय के गिने चुने विश्वास योग्य लोगों को एक ऐसे वर्ग के साथ प्राणघातक आध्यात्मिक संघर्ष में होना था जो अपने को यहूदी बताते थे, पर थे नहीं। नेतृत्व के पदों पर होने के बावजूद वे शैतान की सभा के थे, जैसा कि सिस्टर व्हाइट की गवाही से स्पष्ट है, जिन्होंने यह पहचाना कि कुछ को स्वर्ग से निकाले गए स्वर्गदूतों द्वारा संचालित किया जा रहा था। वे अपने को बुद्धिमान होने का दावा करते थे, पर मूर्ख थे। उस काल में बुद्धिमानों पर कोई दोषारोपण नहीं किया गया, बल्कि मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहने का प्रोत्साहन दिया गया। 1915 में सिस्टर व्हाइट के अंतिम शब्द थे, मैं जानती हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है, क्योंकि वे मृत्यु तक विश्वास योग्य रही थी।
मैं तेरे कामों और क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और उन लोगों की निंदा को भी जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और हैं नहीं परंतु शैतान की सभा हैं। जो बातें तुझे सहनी होंगी उनसे मत डर। देख, शैतान तुम्हें परखने के लिए तुम में से कुछ को बंदी गृह में डाल देगा और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश होगा। मृत्यु तक तू विश्वास योग्य बना रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:9-10।
पेर्गामोस की कलीसिया ने सम्राट कॉन्स्टेंटिन के समय सत्य और त्रुटि, पैगनवाद और मसीही धर्म के बीच हुए समझौते का और साथ ही राजाओं के इतिहास के दौरान प्राचीन इसराइल में हुए समझौते का प्रतिनिधित्व किया। ये सत्य और त्रुटि के मिश्रण का प्रतीक था जो केवल त्रुटि ही उत्पन्न कर सकता है। इसका प्रतिनिधित्व 1919 के बाइबल सम्मेलन ने किया, जहां मसीह का सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रकाशन इस उद्देश्य से कराया गया कि एक ऐसा एडवेंटिस्ट संदेश तैयार किया जाए जो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के झूठे सुसमाचार का और भी निकट प्रतिनिधित्व करे। एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी में ही सत्य के गंभीर समझौते हुए। इसी पीढ़ी में अंठरुस से शुरू होकर चर्च ने वो समझौता शुरू किया जिसने चर्च मैनुअल को जन्म दिया। इसी पीढ़ी में अंठरुस से शुरू होकर चर्च ने वो समझौता शुरू किया जिसके कारण स्वास्थ्य और धर्म दोनों के विद्यालयों में मान्यता आवश्यक हो गई। इसी पीढ़ी में आधुनिक कैथोलिक आधारित बाइबलों को अपनाने की शुरुआत हुई। इसी इतिहास में नेतृत्व ने खुलेआम ईसाई विरोधी शासन व्यवस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने की तत्परता दिखाई। ये प्रथा अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान अपने शैशव चरण में आरंभ हुई, जब लाओ देकियाई नेतृत्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ एक कानूनी संबंध स्थापित किया ताकि कलीसिया के उन युवकों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सके जिन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे घातक युद्ध में भर्ती किया जाना था। और यही कार्य प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में तब दोहराया गया जब जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष A.G. डेनियल्स ने जर्मन सरकार से संपर्क कर जर्मनी को युवकों को सेना में भर्ती करने और उन्हें सैन्य सेवा के लिए मजबूर करने, हथियार उठाने तथा सब्त की उपेक्षा करने की स्वीकृति दे दी। डेनियल्स की उस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप एक विभाजन हुआ जिससे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट रिफॉर्म आंदोलन के विभिन्न गुट पैदा हुए जो आज तक मौजूद है। वो समझौता हिटलर के नाजी जर्मनी के साथ जारी रहा और उसके बाद सोवियत संघ का गठन करने वाले राष्ट्रों के साथ भी, और आज भी चीन जैसे शासन में वो बनाए रखा जाता है। शासन कला के संदर्भ में तीसरी पीढ़ी का ये समझौता इसराइल के प्राचीन राजाओं और कॉन्स्टेंटाइन के समझौते द्वारा निरूपित किया गया था, जैसा कि पेर्गमोस की कलीसिया में प्रतीकित था। वो काल उसकी कलीसियाई व्यवस्था के उस समझौते का भी प्रतिनिधित्व करता था जो प्रेस्कॉट की द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट द्वारा प्रस्तुत शांति और सुरक्षा के मिथ्या सुसमाचार के साथ किया गया था।
मैं तेरे कामों और जहां तू रहता है उस स्थान को जानता हूं, यहां तक कि जहां शैतान का सिंहासन है, और तू मेरे नाम को दृढ़ता से थामे हुए है, और तूने मेरे विश्वास का इनकार नहीं किया, यहां तक कि उन दिनों में भी जब अंतिपास, जो मेरा विश्वास योग्य साक्षी था, तुम्हारे बीच मारा गया, जहां शैतान रहता है। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें हैं, क्योंकि तेरे यहां ऐसे लोग हैं जो बिलआम की शिक्षा को पकड़े हुए हैं, जिसने बालाक को ये सिखाया कि वो इसराइल के पुत्रों के आगे ठोकर का कारण रखे कि वे मूर्तियों को चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। प्रकाशित वाक्य 2:13-14।
ये व्यभिचार जनरल कॉन्फ्रेंस के उस कार्य की पहचान कराता है जिसमें उन्होंने भ्रष्ट सरकारों के साथ आवश्यक कार्य संबंध बनाए रखने के बहाने नाजी जर्मनी और सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों के साथ अपने को जोड़ लिया और उन राष्ट्रों के विश्वास योग्य लोगों की अनदेखी की जो उन्हीं शासन व्यवस्थाओं द्वारा सताए जा रहे थे जिनके साथ वे जुड़ गए थे। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद की उस झूठी कार्यप्रणाली का प्रतीक था जो उस समय लाओदीकियाए एडवेंटिज्म के विश्वविद्यालयों में दृढ़ता से स्थापित हो चुकी थी और जिन्होंने धर्म तथा स्वास्थ्य दोनों में धर्मत्यागी कार्यप्रणालियों के दिशा निर्देशों के अधीन होने को स्वीकार कर लिया था। यीशु ने तीसरी पीढ़ी का अंत उसी तरह दिखाया जैसा उसने उसका आरंभ दिखाया था, क्योंकि उसने 1957 में प्रकाशित क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक के प्रकाशन द्वारा चौथी पीढ़ी के आगमन को चिह्नित किया, जिसने सत्य और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद तथा कैथोलिक धर्म के गलत विचारों के बीच विद्यमान उद्धार संबंधी मूलभूत भेद को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उस पुस्तक में निस्संदेह कई गलत शिक्षाएं हैं, पर मूलतः वो यह सिखाती है कि जब तक दूसरे आगमन पर किसी व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल न दिया जाए तब तक मसीह में विजयी जीवन जीना असंभव है। इस पुस्तक ने उस पीढ़ी की शुरुआत को चिह्नित किया जिसमें 25 प्राचीन पुरुष सूर्य के आगे झुकने वाले थे, शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय रविवार उपासना को स्वीकार करने हेतु लाओदीकिया की एडवेंटिस्ट कलीसिया को अनुमति देने वाले आवश्यक राजनीतिक और धार्मिक तत्व आ चुके थे। ये हिजकेल की चौथी घृणित बात तब घटित होती है जब अध्याय 9 में कुछ विश्वास योग्य जन अपने माथों पर मुहर पा रहे होते हैं, ठीक उससे पहले जब विनाशक स्वर्गदूत अपना कार्य आरंभ करने वाले होते हैं। ये दर्शन अध्याय 8 की पहली आयत में छठे वर्ष के छठे महीने के 5वें दिन आरंभ होता है। ये दर्शन उन पर न्याय के निर्णय का क्रियान्वयन होने से एक दिन पहले शुरू होता है, जो सूर्य के आगे झुकते हैं, जो पापाई अधिकार का चिन्ह है और उसके नाम की संख्या 666 है। 144,000 की मुहरबंदी का कार्य 11 सितंबर 2001 को इस्लाम की तीसरी विपत्ति द्वारा पृथ्वी के पशु पर किए गए हमले के साथ आरंभ हुआ। उस हमले ने राष्ट्रों को क्रोधित कर दिया और अंतिम वर्षा के आगमन को चिह्नित किया, परंतु अंतिम वर्षा को केवल वे ही पहचानेंगे जिन्हें ये देखने के लिए एडवेंटिज्म की नींव की ओर वापस ले जाया जाएगा कि इस्लाम की तीन विपत्तियां एक बुनियादी सत्य है। उस समय जिन्हें उन प्राचीन मार्गों की ओर वापस ले जाया गया जिन्हें यिर्मयाह विश्राम जो कि अंतिम वर्षा है के रूप में पहचानता है, वे या तो ऐसे पहरेदार बनेंगे जो तीसरी विपत्ति का नरसिंगा फूंकते हैं, या वे ऐसे होंगे जो नरसिंगे की ध्वनि सुनने से इनकार करते हैं और इस प्रकार प्राचीन मार्गों पर चलने से भी इनकार करते हैं। तब उनकी परीक्षा उनके पितरों की 1863 की बगावत के पाप से हुई। ठीक उसी समय मसीह की धार्मिकता का एक संदेश आया जो सत्य में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना है। वो जोन्स और वेगनर का लाओदीकीय संदेश था और वो यहेजके का मरी हुई सूखी हड्डियों के लिए संदेश भी था जो चार हवाओं से आया था, जो तीसरे हाय के इस्लाम का प्रतीक है, वो क्रोधित घोड़ा जो बंधन तोड़कर छूटने को उद्यत है। तब उन थोड़े से विश्वास योग्यों की फिर परीक्षा उनके पितरों की 1888 की बगावत के पाप से हुई, जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरा, जब न्यूयॉर्क नगर की बड़ी इमारतें ढा दी गईं और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के पद 1-3 की पूर्ति हुई। वे तब अंतिम वर्षा के संदेश की पहचान द्वारा परखे गए। क्या अंतिम वर्षा बीते युगों की तरह परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रगटीकरण थी, या परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रगटीकरण केवल अतीत में ही थे? फिर वफादार कुछ की परीक्षा 1819 में उनके पिता की बगावत से हुई। उन तीन परीक्षाओं से वफादार कुछ कैसे गुजरते हैं यह निर्धारित करता है कि वे अपने ललाट पर परमेश्वर की मुहर पाएंगे या लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के 2500 प्राचीनों के साथ सूर्य के आगे झुकते हुए स्वयं को पाएंगे। लाओदीकियाई एडवेंटवाद की चार पीढ़ियों की सभी बगावतों का समकक्ष 11 सितंबर 2001 में मिलता है, वो तिथि जिसे यशाया ने पूर्वी पवन का दिन के रूप में पहचाना। 144,000 की मुहरबंदी के समय की शुरुआत को चिह्नित करती है और मुहरबंदी का समय एक समय अवधि है। इस अवधि का अंत उसकी शुरुआत द्वारा ही चित्रित किया गया है, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से ही दर्शाते हैं। मुहरबंदी की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में वे परीक्षाएं जो अवधि की शुरुआत में दर्शाई गई थीं, एक बार फिर दोहराई जाती हैं। 11 सितंबर 2001 को वे परीक्षाएं आ गईं, जिनमें जैसा कि यहेजकेल की चार गुरुणित कर्मों और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 की पहली 4 कलीसियाओं द्वारा दर्शाया गया है, लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के विद्रोही असफल रहे थे और उनके आगमन ने उन लोगों के लिए जो अपने आप को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कहते हैं एक ऐसी परीक्षात्मक प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया जो या तो पशु का चिन्ह या परमेश्वर की मुहर तक ले जाती है। लाओदीकियाई एडवेंटिज्म का नेतृत्व अपनी ही छल कपट की रस्सियों में फंस चुका है और उनके लिए ईश्वर की शक्ति के उस प्रगटीकरण की पुनरावृत्ति को पहचानना लगभग असंभव हो गया है। जैसा कि पूर्ववर्ती सुधारवादी आंदोलनों द्वारा दर्शाया गया था, जिनमें वो सुधार आंदोलन भी शामिल है जिसने एडवेंटिज्म को अस्तित्व मिलाया। प्राचीन लोगों ने मिलर के रत्नों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सिद्धांतों को नकली सिक्कों और रत्नों से बिखेर दिया और ढंग दिया। किंग जेम्स बाइबल की रत्न पेटिका को पुरातन भाषा के काल की वस्तु मानकर वही सीमित कर दिया गया है और उसकी जगह आधुनिक भाषा की बाइबलें लाई गई हैं जो पाप के मनुष्य की पारिभाषिक शब्दावली में व्यक्त की गई हैं। यदि प्राचीन लोगों में से कोई ये संभावना मानने को तैयार भी होते कि अंतिम वर्षा का संदेश शांति और सुरक्षा का संदेश नहीं है, तब भी उनके लिए ये पहचान पाना लगभग असंभव होता कि भूतपूर्व पवित्र इतिहासों में परमेश्वर की शक्ति के जो प्रगटीकरण हुए वही 144,000 की मुहरबंदी की विशिष्ट पहचान है। उनके लिए इससे भी कठिन ये पहचानना है कि वे पवित्र इतिहास जो 144,000 की मुहरबंदी को सबसे प्रत्यक्ष रूप से चिन्हित करते हैं वही पवित्र इतिहास हैं जो मलाकी अध्याय 3 को पूरा करते हैं, क्योंकि मलाकी अध्याय 3 ये स्थापित करता है कि वाचा के दूत के अकस्मात आगमन के लिए सदा एक दूत मार्ग तैयार करता है। वो दूत भविष्यद्वक्ता एलियाह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जिसने साहसपूर्वक घोषणा की कि उसके काल में सिवाय इसके कि वो उसकी सेवा कार्य के माध्यम से आए वर्षा नहीं होगी। यहेजकेल के 70 प्राचीनों को ये स्वीकार करना हास्यास्पद लगता कि प्रभु के मंदिर होने का उनका दावा निराधार था और वास्तव में उन लोगों के दावे का प्रतिनिधित्व करता था जो उपेक्षित किए जा रहे थे। जैसे दाख की बारी उन लोगों को दे दी गई जो दाख की बारी के योग्य फल लाते हैं। तीसरे हाय का संदेश, मार्ग तैयार करने वाला दूत और दाख की बारी का गीत, ये सब उन परंपराओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध गवाही देते हैं जिन पर उन्होंने अपना भरोसा रखा था और अंतिम वर्षा को पहचानने में लगभग दुर्जेय या बाधा बन जाते हैं। 144,000 की मुहरबंदी का समापन उन लोगों के लिए वही परीक्षाएं प्रकट करता है जिन्होंने तीसरी विपत्ति में इस्लाम की भूमिका को पहचानने का दावा किया है। ज्ञान की वृद्धि जिसने मिलराइटों के आंदोलन की शुरुआत की 1798 में 7 समय के अंत में शुरू हुई। ज्ञान की वृद्धि जिसने 144,000 के आंदोलन की शुरुआत की 1989 में सांकेतिक 7 समय 126 वर्ष के अंत में शुरू हुई। उन 126 वर्षों के लगातार बढ़ते धर्म त्याग के दौरान लौदीकियाई एडवेंटवाद अपनी चौथी और अंतिम पीढ़ी तक पहुंच चुका है। यही तीसरी और चौथी पीढ़ी होती है जब कोई राष्ट्र या लोग अपनी परख की अवधि का प्याला भर देते हैं और वो समय अब आ पहुंचा है। दानियल की पुस्तक का ज्ञान की वृद्धि जो हिद्देकेल नदी द्वारा दर्शाया गया है वही ज्ञान है जो तब बढ़ता है जब परख की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खोली जाती है। हम अगले लेख में दानियल की पुस्तक के अंतिम 12:3 अध्यायों पर चर्चा करेंगे।
वे दिन तेजी से निकट आ रहे हैं जब बहुत बड़ी उलझन और भ्रम होगा। शैतान स्वर्गदूत के वस्त्र पहनकर यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों तक को भी धोखा देगा। अनेक देवता और अनेक प्रभु होंगे। हर सिद्धांत की हवा चलेगी। जिन्होंने कथित विज्ञान को सर्वोच्च सम्मान दिया है वे तब नेता नहीं होंगे। जिन्होंने बुद्धि, प्रतिभा या कौशल पर भरोसा किया है, वे तब साधारण जनसमूह के अग्रणी स्थान पर खड़े नहीं होंगे। उन्होंने प्रकाश के साथ कदम नहीं मिलाए। जिन्होंने अपने को अविश्वस्त सिद्ध किया है, उन्हें तब मंडली का भार नहीं सौंपा जाएगा। अंतिम गंभीर कार्य में कुछ ही महान पुरुष लगे होंगे। वे आत्मनिर्भर हैं, परमेश्वर से स्वतंत्र हैं और वो उनका उपयोग नहीं कर सकता। प्रभु के पास विश्वास योग्य सेवक हैं जो हिला देने वाले परख के समय में प्रकट होंगे। कुछ अनमोल लोग अभी छिपे हुए हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेका। उन्हें वो ज्योति नहीं मिली जो केंद्रित तेज के साथ तुम पर चमक रही है, परंतु संभव है कि खुरदरे और अरुचिकर बाहरी रूप के भीतर सच्चे मसीही चरित्र की निर्मल दीप्ति प्रकट हो। दिन में हम आकाश की ओर देखते हैं पर तारों को नहीं देखते। वे वही हैं आकाशमंडल में स्थिर, पर आंख उन्हें अलग नहीं पहचान पाती। रात में हम उनके वास्तविक तेज को निहारते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 5 80-81।